से नहीं होगा और बाकी सब विश्व का, इसलिए कोटि कोटि जन्म तक भी शुभ कर्म करके भी कुछ लाभ नहीं होगा। लाभ होगा इस स्थिति में कुछ यदि वो भगवत भाव से कुछ लग गया है, यदि उसका फल भगवान का, इससे भी कुछ लाभ नहीं होगा। इससे क्या होगा, कर्म में कुछ चीज देने की शक्ति आई, जैसे स्वर्ग लोग बस यही होगा और कुछ लाभ नहीं होगा। शुद्ध भक्ति जब तक नहीं होगी तब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, न शुद्ध रूप में वैकुंठ की गति मिल सकती है, गोलोक और ब्रज की प्राप्ति तो बहुत दूर है। इसलिए इसकी परीक्षा कर लिया, कैसे परीक्षा किया, परीक्षा कहा कैसे, एक व्यक्ति ने हजारों जन्मों तक संसार में जितने शुभ कर्म थे, सत्कर्म थे, उसको उसने किया और करने के बाद में वो इंद्र बना और इंद्र बनने के बाद में फिर उसको सुअर बनना पड़ा। तो देखो ये परीक्षा हुई ना, सुअर बन करके जब आया तो ब्रह्मा जी कहीं जा रहे थे, देखा अरे ये तो सुअर है इंद्र, तो फिर देख करके कहा जी ये तो ये सुअर के अंदर में ये तो इंद्र है, तो अरे भाई तुम सुअर नहीं है तुम इंद्र है। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं सुअर हूं, मैं इंद्र सिंद्र कुछ नहीं। तो उन्होंने सुअर की भाषा में कहा, ब्रह्मा जी तो सब भाषा जानते हैं, नहीं तू सुअर नहीं है तू इंद्र है, हमारे साथ में स्वर्गलोक कर चल। अरे मैं स्वर्गलोक तो जानता नहीं हूं, अच्छा वहां पर जैसे यहां पर हमको ताजा मुझको भोजन मिलता है वहां पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे ये गंदी चीज नहीं मिलती, आप उसको गंदा चीज कहते हैं। अंत में वो जब नहीं गया तो उसने उनके बच्चों को मारा, बच्चे चिल्लाते चिल्लाते मर गए, उन्होंने पकड़ करके उनके पैर पकड़े रखे और जब मारने आए तो उतर से चले गए, कहे कोई हर्ज नहीं हमारी स्त्री सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारी स्त्रियां सुरक्षित रहेंगी तो फिर हमारे एक एक साथ में 16-16 बच्चे 20-25 स्त्रियां हैं, कुछ दिनों के बाद में फिर प्रचुर हो जाएंगे। जब ठीक रहे तो ठीक है, बच्चों की माँ को ही अब मारी है, बच्चों की माँ को लेकर के धीरे धीरे मारना, उन्हें कोई चिंता की बात नहीं है, मैं और कितनी इधर उधर है मैं सबको फिर से शादी करके अपना बना लूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तो ठोस ठीक है, और पानी लिया प्रोक्षण करके मंत्र पढ़ा और लेकर के उनको सब छिड़क दिया और साथ ही साथ में उनको दिव्य ज्ञान दिया, मैं पढ़ा हूं मैं तो इंद्र हूं, अब उनके चरणों में गिरेंगे प्रभु आप हम पर कृपा। तो उन्होंने कहा जी अच्छा तब चलेगा, कहां चलेंगे, फिर मंत्र प्रोक्षण करके छोड़ दिया, उसका स्वर शरीर छुड़ गया और उनको लेकर के ऐसे परीक्षा करके। इसके बाद में भी ब्रह्मलोक की परीक्षा है, ब्रह्मलोक में भी कोई सुख और शांति नहीं, ब्रह्मलोक के बाद में भी और एक दुर्गा के उस पार में ब्रह्मलोक है, वहां पर भी कोई सुख नहीं। यदि परीक्षा करनी है तो एक यंत्र मिलता है इसके लिए, वो यंत्र सनातन गोस्वामी ने ही बनाया है और वो यंत्र का नाम है बृहद भगवत, बस उस यंत्र को लगाओ और देखो एकदम कहां तक ले जाओ,
ब्रज वृंदावन
तक ले जाओ, वो उससे समझाएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसलिए जब हम विचार करके देखते हैं कि कर्म और कर्म से बने हुए जितने भी लोग हैं तो शाश्वत अपत्र, उसे कोई भी लाभ नहीं, तब क्या करो, तस्मात
गुरु
सब गुरु को प्रभु, कैसे गुरु को, इन्होंने कहा जब गुरु तो कह दिया किंतु कैसा गुरु, तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु
देवो।
यदि तुमको कर्मों की परीक्षा करने के बाद में जब मालूम पड़ा कि इसे सुख शांति नहीं होगी, सब समय अभद्र ही रहेंगे, भव सागर से पार नहीं होंगे, तब उसको सदगुरु के पास में जाना चाहिए। किस लिए, पूछने के लिए जो उत्तम श्रेय क्या है, कल्याण क्या कौन सा है,
तब वो गुरु कैसे होंगे? शब्द ब्रह्म, अपर ब्रह्मनिष्ठ। शब्द ब्रह्म माने जितने हमारे व्यास जी ने ये सब बनाया, जिसका जन्म आज तिथि है, आज ही उनकी तिथि है व्यास जी। तो व्यास जी ने जितने भी ग्रंथ भारतीय वाङ्मय बनाया है, ये जगत के कल्याण के लिए बनाया है। तो उसके द्वारा हमारा कैसे यथार्थ कल्याण और मंगल होगा, उसमें जानने के लिए ये सब शास्त्रों में निपुण हो, क्या हमारे लिए कल्याणकारी है क्या नहीं है, इसको अच्छी तरह से जानने वाला, इसको कहते हैं शब्द ब्रह्मनिष्ठ। अर्थात इसमें खूब अच्छी तरह से ज्ञान है। और दूसरा परब्रह्मनिष्ठ, भगवत अनुभूति पूछो, अर्थात अंततः जरा मध्यम अधिकारी का उत्तम भी हो, भजन खुद नहीं करता है, दूसरों को भजन नहीं करा सकता है, शास्त्रों का जिनमें ज्ञान नहीं है वो गुरु होने योग्य नहीं। विशेष करके ज्ञान होने पर भी यदि आचरण में वो भगवान का भजन नहीं करता है तो कदापि गुरु होने योग्य नहीं। कहते हैं कि चारों वेदों को और पुराण 18 पुराण 1108 उपनिषदों को सबका ज्ञान होने पर भी जो भगवत भजन नहीं करता और भगवत भजन की अनुभूति जिनमें नहीं है, जिनमें अनर्थ दूर नहीं हो गया, अनर्थ दूर होने के बाद में निष्ठा रुचि आसक्ति अभाव आने वाला है, ऐसा व्यक्ति ही गुरु होने योग्य है। उसके गुरु के करने से क्या होगा, तब हमको भगवत भक्ति निश्चित रूप में होगी, वो अपने विचारों को हमारे अंदर में संक्रमित कर सकता है, और नहीं तो वो ये इतना कर सकते हैं कि वो जो जानते हैं जैसे कौन गुरु हैं उनके पास में, इसलिए उनको पथ प्रदर्शक गुरु कहते हैं। तो इस तरह से गुरु का लक्षण दिया गया और ऐसे गुरु के द्वारा ही लोगों का कल्याण किया। सनातन गोस्वामी ने इस लोगों को उद्धृत किया, यहां तक इन्होंने बतलाया यदि गुरु भक्ति राज्य से भ्रष्ट हो गया तो उसको प्रत्याग करके दूसरा गुरु लेना चाहिए, ये भी बतलाया। यदि शास्त्रों में निपुण है किंतु भगवत भक्ति उनमें नहीं है तो उनको भी छोड़ दिया जाए, ये सब लक्षण बतलाया। शिष्य के लिए क्या बतलाया, शिष्य के लिए बताया उत्तम कुल में पैदा। उत्तम कुल माने क्या, जिनके माता पिता और सब अच्छे विचारों के हैं उसको लिए कहा गया उत्तम कुल। ब्राह्मण वैश्य शूद्र इत्यादि के संबंध में नहीं कहा गया, जिस शिष्य जहां भी उत्पन्न हो किंतु उत्तम कुल हो, जिसमें भगवत भक्ति से संबंध हो, निरस होना चाहिए। निरस माने आलसी नहीं, आज्ञा पालन में, गुरु की आज्ञा पालन में सतत कुशल होना, प्रयासी होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं चल पूरब में और वो चलता है पश्चिम में, गुरु जी कहते हैं कि ये सेवा करो तो वो कहता है जो गुरु जी इसको छोड़ करके बाकी मैं सब करूंगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं। इसलिए उसकी आज्ञा को मांग करके निरस होकर के साधन भजन है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले सबको उठना है, सब शिष्य को गुरु जी के सो जाने के बाद में सब फिर सोए और गुरु जी के उठने के पहले वो उठे और साधन भजन करे, ठाकुर जी का मंगल आरती करे, दर्शन करे, अपना साधन भजन अच्छी से करे और विषय लोलुप न हो, न तो गुरु और न तो शिष्य, कोई भी विषय लोलुप न हो। बहुत से दिए हैं सब, रामानुज आचार्य ने भी कुछ कलेक्शन किया है उनके संबंध में भी करने वाले। तो इस तरह से शिष्य और गुरु का लक्षण दिया और कैसे उनकी सेवा होगी, साधारण रूप में कर्तव्य के रूप में उन्होंने बतलाया इधर में, और रूप गोस्वामी ने बतलाया रघानुदा भक्ति के जो गुरु और शिष्य हैं उनका विचार कर बतलाया। ये सनातन गोस्वामी जी पहले किसी ब्राह्मण परिवार में थे, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, किसी कारण से दक्षिण भारत छोड़ करके, महाराष्ट्र छोड़ करके बंगाल में आए। इनके पिताजी पहले हमारे चिचुड़ा मठ के पास ही में नई हट्टे एक गांव, वहां पर कुछ दिन रहे और उसके बाद में छोड़ करके चले गए पूर्व बंगाल की तरफ। वहां जाने पर अभी बालक ये लोग तीन थे, एक पिता के तीन लड़के थे या चार लड़के थे, किंतु तीन ही का उल्लेख मिलता है। अब वो लोग पढ़ाई छोड़ करके एक जगह में बात बात कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या किया जाए, कोई नौकरी चाकरी हो या वाणिज्य व्यवसाय क्या किया जाए। उस समय की शिक्षा प्रधान थी संस्कृत और अरबी फारसी, क्योंकि मुसलमानों का शासन था और इधर में संस्कृत के द्वारा भारतवर्ष के समस्त जगहों में हम लोग जा सकते थे। उस समय कॉमन लैंग्वेज संस्कृत, चैतन्य महाप्रभु जहां जहां गए हैं समस्त भारत वो किस भाषा में बोलते थे, इसलिए उस समय में केवल संस्कृत चल सकती थी और मुसलमानों की भाषा थी अरबी फारसी, उसमें भी लोग बातचीत कर रहे। ये हमारे सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी और उनके छोटे भाई थे, छोटा भाई का नाम
अनुपम,
तीनों इन विद्याओं में बहुत पारंगत थे और बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि के थे, क्योंकि ब्राह्मण होने पर भी इनका राज परिवार से संबंध था, माने इनके पैतृक जितने थे राजा राजवंश के थे ब्राह्मण, इससे बड़े सूक्ष्म बुद्धि के थे। जिस समय एक शहर में रहते थे उसके पास ही मुसलमानों के एक सम्राट रहते थे, हुसैन साहबा का उनका नाम, वो एक बहुत कुतुब मीनार जैसा वो बना रहे थे अपने शहर में राजधानी, बहुत काफी ऊंचाई। तो वो हठात जो बना रहा था उसने कहा महाराज से, महाराज ने कहा बहुत सुंदर हुआ है, हुसैन शाह ने कहा। उसने कहा कि महाराज मैं तो इसे भी अच्छा बना सकता हूं।
अच्छा,
इसे भी अच्छा बना, तो बनाया क्यों नहीं, बनाया क्यों नहीं, तब उत्तर तुम इसे भी अच्छा नहीं बना सकता है तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, इसलिए इसको इसी तुम्ब से ऊपर से उपस्थित किया गया, बस ऊपर से लेकर के और उसके कहने के साथ साथ बस ऑर्डर एकदम ऑर्डर बस ऊपर से लेकर के फेंक दिया नीचे और वहीं तो मर गया। और उस समय वो कुछ क्रोधित था, उसने अपने एक कर्मचारी को, राज कर्मचारी ऊंचा ऊंचे पदवी का, उसने कहा जाओ जल्दी जाओ जल्दी यहां से जाओ और जाकर के ये काम करते आ जाओ, किंतु ये नहीं बतला कि क्या करना है,
जाओ
बस जल्दी जाओ और जल्दी से आ जाना। वो थर थर कांपता हुआ देखा कि यदि मैं नहीं गया तो अभी हमको भी फेंकवा देगा, मैं भी मरूंगा, बस वो दौड़ करके वहां से चला, किंतु क्या करूं ये पता नहीं। सोचा जैसे आज यदि शाम तक मैं नहीं लौटा इसके पास तो हमको खुदवा करके मार डालेगा, इसलिए वो शहर को छोड़ करके पास वाला जो शहर था जिसमें सनातन गोस्वामी इत्यादि रहते थे तीनों भैया, वहां पर पहुंच गया। बड़ा दुखी था, दूसरे दिन वो घूम रहा था शहर में, कहीं क्या करूं कहां जाऊं कैसे मेरे प्राण बचे। तो उसने रूप सनातन जी एक जगह बैठे थे, सनातन जी ने उसको बुलाया तो वो आ गया। सनातन गोस्वामी का नाम उस समय अमर संतोष, संतोष और इनका नाम था अमर, तो संतोष और अमर ने उनको बुलाया और वो आते आया। भाई तुम इस प्रकार से तुम्हारा मुख ऐसा ऐसा कैसा मालूम होता है कि तुमको कोई विशेष चिंता है। हाँ मैं बहुत चिंता, क्यों मैं महाराज से डरा हूं, यदि हमको बुलाया और हमको मारना डाले क्यों मार डालेगा, तो हमको किसी काम से भेजा तुम तो मुझको पता नहीं ये तुमको क्या करना है। और वो कहा जल्दी से आ जाना और मैं काम नहीं करूंगा तो हमको मार डालेगा वो। कहने अच्छा ये बतलाओ तो उस समय महाराज कहाँ था? तो वहाँ पर एक बन गई थी बहुत ऊंची मीनार, उस पर बैठा था। उसमें क्या कर रहा था? तो वहां पर जो बन गई थी अधूरी थी, थोड़ी सी बाकी थी, किंतु उसने उससे पूछा, उसने कहा कि बहुत सुंदर बना है। तो वो कारीगर ने कहा
इससे बढ़िया बना
था, इससे बढ़िया था, उसको फेंकवा दिया, मर गया। और उसके बाद में मुझको ऑर्डर दिया जल्दी जाओ, जल्दी आओ, यहीं आता तो तुमको भी तलवार से काट दूं, तो तुम चिंतित मत हो। एक बात करो, तुम यहाँ दो तीन मिस्त्री बड़े अच्छे अच्छे हैं, उन दोनों मिस्त्रियों को तुम ले जाओ और जा करके महाराज के पास में कहो। बस मिस्त्रियों को लेकर के वहां जब पहुंचा, अरे मैंने तुमको बतलाया नहीं ये किस काम से भेजा, तुम कैसे आ गया और इन लोगों को कैसे लाया? अरे हजू आप यदि मेरी प्राण की भिक्षा दे तो मैं बतलाऊ, मैं तो यहाँ से चला गया, मैं सोचा है क्या करूं। तो दो लड़के वहां पर हैं अभी छोटे छोटे किशोर उम्र के, उन लोगों ने पूछा, मैंने बतलाया, साथ साथ में ये मिस्त्री देकर के हमारे साथ में भेज दिया। तो वो हंसने लगा, अच्छा उन दोनों को जाओ बुलाओ। तो उन दोनों को और कहा कि आज से मैं तुम्हें अपना प्रधानमंत्री और खास सेक्रेटरी, प्राइवेट
सेक्रेटरी,
और उनको उपाधि दे दी और उनको निदुष्ट कर दिया। उनका कहे तुम्हारा और कोई भाई है? अच्छा एक और भाई है, उसको भी बुला लाओ। तो उसको बुला ला, तो उसको बना दिया कि आज हमारे तत्काल का ये मालिक हो जाए, फाइनेंस मिनिस्टर उनको कर दिया। तीनों भाइयों को वहां पर रख दिया, इस तरह से रख दिया। कुछ दिनों के बाद में राज चलने लगा, ये लोग भी बड़े प्रसन्नता से काम करने लगे, किंतु एक काम करते थे, नवदीप में जाकर के बड़े बड़े पंडित लोगों को बुला करके ले आते और भागवत का श्रवण करते, विद्वान तो थे उनका श्रवण करते, अब विभिन्न विभिन्न प्रकार के पहले जो टीकाएं थी उसका भी श्रवण करते। वहीं के कोई गुरु थे, बृहस्पति कोई थे, कोई आचार्य थे, गोस्वामी थे, उनके साथ उनको बुला करके उनके साथ में ये सब आलोचना करते। धीरे धीरे उनकी भक्ति की तरफ में रुचि होती चली गई। भक्ति की रुचि इसलिए बतला रहा हूं, है तो नित्य परिकर, किंतु इस जीवन में आने पर उसको ऐसा ही दिखता है और ऐसा ही लगता है कि मानो साधक हैं। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में चैतन्य महाप्रभु जी वहां पर आए, तब तक इनकी भक्ति प्रगाढ़ हो चुकी थी। उस समय जीव गोस्वामी छोटे से बच्चे थे, गोदी में लेकर के और महाप्रभु जी के पास में आए और महाप्रभु जी के चरण में उनको रख दिया। महाप्रभु जी ने उनको कृपा की और इन लोगों ने कहा वृंदावन जवार नहीं ये परिपाटी, वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है इतने लोगों को लेकर के, लोग संदेह करेंगे और आक्रमण भी हो सकता है, इसलिए आप यहां से लौट। उनकी बात सुनकर के लौट गए, किंतु महाप्रभु जी के विचारों का छाप उन पर ऐसा पड़ा है जब उनका राज्यकाल में मन नहीं लगा। उन्होंने वहीं पर सुंदर सुंदर तालाब बनाए, एक का नाम रखा राधा कुंड, एक का नाम रखा क्या तमाल के वृक्ष लगाए, कदम बके तमाल के पेड़ लगाए और वहीं पर राधा कुंड और श्याम कुंड की भावना करके और वहीं पर भजन करने लग गए। महाप्रभु जी ने कहा अधिक दिन मत रहना, जीवन व्यर्थ न जाए, इसलिए तुम लोग जल्दी से तैयार रहना, मैं वृंदावन जाऊंगा और तुम भी उधर से खबर पा करके वृंदावन में तुम लोग हमसे मिलना। ये कह करके तो लौट गए। कुछ दिनों के बाद में महाप्रभु फिर जब वृंदावन के लिए चले तो इनों को पता चला, रूप गोस्वामी जी उसी समय राज्य काज छोड़ करके चल दिया अपने छोटे भाई को लेकर महाप्रभु जी से मिलने के। जब वो चले गए तो वो महाप्रभु जी वृंदावन से लौट करके आ रहे थे तो रूप गोस्वामी से भेंट हो गई प्रयाग में, और जब इनको शिक्षा दे करके उधर में भेजा तब तक सनातन गोस्वामी से भेंट हुई वाराणसी में। वाराणसी में उन्होंने कुछ दिन रह करके और उनको ये सब जितनी भी शिक्षाएं हैं हरिभक्त विलास से लेकर के बृहद भगवतामृत की जितनी भी कथाएं हैं
तत्व और सिद्धांत को सबको सुनाए और आदेश दिया वृंदावन में जाओ, लुप्त तीर्थों को उद्धार करना और जितने शास्त्र हैं भक्ति शास्त्र उनका प्रणयन करो और विग्रह जो लुप्त हो गए हैं गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी इनको भी प्रकाश करो और भक्ति का प्रचार, ये आदेश दे करके और तब उन्होंने इन लोगों को भी वृंदावन में भेजा। तो सनातन गोस्वामी वहां आने के पहले राज्य कार्य कर रहे थे और रूप गोस्वामी ने उनको एक पत्र लिखा, जल्दी से आप आ जाइए, उसमें तीन चार पांच सात अक्षर लिखा, एक एक श्लोक का
अक्षर लिया,
एक एक अक्षर लिखा हुआ, जैसे जौ जौ मैंने जदुकुल स्वागता मैंने जदुपुरी कहाँ गई और उत्तर कोसला उत्तरा कोसला मैंने रामचंद्र जी का अयोध्या आज कहाँ है
रघुपते
और रघुपते स्वागते रघुपते
रघुपते कार्यता उत्तर
कोसला रघुपति कहाँ है आज, जितने बड़े बड़े नरेश थे वो कहाँ गए, तुम लोग भी सब समय जीवित नहीं रहेगा, तुम्हारा ये सब कुछ वैभव छूट जाएगा, किसलिए लिखा जैसे वो बुद्धिमान है समझ जाएंगे। और साथ ही साथ सनातन गोस्वामी ने पाया और उन्होंने राजकाज छोड़ दिया, अभी जल्दी से महाप्रभु जी से मिलना है। उन्होंने कहा जे राजा ने कहा जे मैं जा रहा हूं अभी पुरी में, पुरी के राजा से मेरी लड़ाई है युद्ध होने वाला, इन्होंने कहा कि मैं नहीं जाता, आप जाएंगे धर्म स्थान पर चढ़ाई करने के लिए, मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगा, कहा कि इसको लेकर के जेल में बंद कर दो। और भी घटनाएं मैं संक्षेप में बतला रहा हूं, पहले तो उन्होंने बहाना किया मैं बीमार हूं मैं नहीं आ सकता, तो राजा खुद गया वहां देखा, देखा जी बड़े बड़े पंडितों को लेकर के भागवत की चर्चा हो रही है, कहा जी अरे तुम हमारा बड़ा भाई और तुम्हारे ऊपर में सब कुछ छोड़ दिया और तुम यहाँ पर घर में बैठे हो और भागवत बांट रहे हो, जल्दी से हमारे साथ में चलो, राजकाज में हमारा चौपट होता जा रहा है। उन्होंने कहा अब मुझे राजकाज नहीं होगा, उन्होंने सोचा राजा मोरे प्रीति करे ये मोर बंधन, राजा मुझे प्रीति करता है ये मेरा बंधन है, संसार के लोग मुझे प्रीति करते हैं ये मेरा बंधन है, इसलिए सब बंधनों को काट करके उसको बिगाड़ दिया, वो क्रोधित हो गया राजा और जेल में बंद कर दिया, पीछे से वो चला गया वहां। और इधर में किसी प्रकार से उस जेल खाने के जो मालिक था जेलर, जेलर को कहा अरे तुमको तो मैंने नौकरी पर मैंने लगाई, इसलिए मेरी बात सुनो, हमको छोड़ दो हम पैसा दे देंगे। उन्होंने कितना कितना हजार स्वर्ण मुद्रा के सामने दे दी, पहले पांच, वो कहा कि भाई मैं कैसे छोड़ दूं, तो उन्होंने साथ साथ में और दे दी एकदम सोने की मोहर एकदम, तब अब तो लालच रहा नहीं गया, उन्होंने कहा मैं यहां नहीं रहूंगा मक्का चला जाऊंगा मदीना, बस छोड़ दिया। और उसके बाद में ये रात ही रात गंगा को पार करके चले आए जंगल में, वहां पर जंगल में इनके साथ में एक सेवक था उसका नाम ईशान, उसने चोरी करके छिपा रखे थे सात या आठ मोहर, आठ मोहर जंगल में बड़े डकैत रहते थे, अभी भी ऐसे होते हैं, उन्होंने उनके पास में ज्योतिष जानने वाले लोग होते हैं, ये जो व्यक्ति आ रहा है इसके पास में सात आठ मोहर है सोने की, बस उसके पीछे आदमी भेज दिया जिसको किसी प्रकार से ठग करके इधर ले आओ और यहाँ रात में मार करके इसका सब ले ले। सनातन गोस्वामी इनको लेकर के गया, वहां देखा इनको बड़ा आदर किया, खूब सुंदर सुंदर भोजन इनको लिए लाए, पलंग इनके लिए ला दिया। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि परिचय तो है नहीं और इतना आदर क्यों कर रहा है, माता से भी जो अधिक आदर करता है ना तो क्या करते हैं वो डाइन है, जैसे चाचा जी मुर्गी का पालन करते हैं ना खूब खिलाते हैं
या बकरी बकरी का खिलाते हैं किस लिए?
चाचा ये समझे नहीं मुसलमान
तो इसलिए कहते हैं ये आदर क्यों किया? कोई कारण है? अपने नौकर को बुलाकर कहे तुम्हारे पास कुछ है? अजय हाँ, आपकी सेवा के लिए मैंने 7 मोहर रखे थे, 1 छिपा दिया, अजय जल्दी से लाओ, लेकर के उसको दे दिया। डकैत ने कहा आप तो बड़े चतुर आदमी मालूम पड़ते हैं, आपने तो दे दिया, आज तो हम आपको प्राण से मार करके ले लेते, तो आपने पहले ही दे दिया। अच्छा आप बतलाइए क्या चाहते हैं? अभी एक और है उसके पास, किंतु आप जैसा कहते हैं अब वैसा ही हम करें, तो हमको जंगल से पार करके बनारस हम जाएंगे, वहां आपके लिए रास्ता बना देंगे। अच्छा ठीक है, बस लाल से हरिकेन दे करके एक अपने नौकर को दे करके डकैतों ने उनको वहां से पार कर दिया। जब वो पार होकर के वाराणसी के समीप आए जंगल को पार करके, तो उन्होंने पूछा तेरे पास कुछ और है? कहा एक मोहर और है, बस इसी को लेकर के तू फट लो, तू हमारे साथ में रहेगा, हमारा भी भजन नहीं होगा, तुम्हारा तो होगा ही। बस उसको निकाल करके दी, बहुत रोता गिड़गिड़ाता रहा किंतु नहीं दिया। इसके बाद में महाप्रभु से भेंट हुई। इतने बड़े प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे, शरीर पर उनके फटे वस्त्र, दाढ़ी और ये सब बड़ी हुई थी, और दिन रात वो आ चलते आ रहे थे, भूखे थी, दुबले हार लग गए। महाप्रभु जी वहां पर उस समय में थे, महाप्रभु जी ने भीतर से कहा जाओ देखो तो कोई एक संत आए हैं। किसको कहा? चंद्रशेखर आचार्य को। चंद्रशेखर आचार्य देखने गए, देखा जैसे कोई तो है नहीं, एक मुल्ला वहां पर खड़ा है, दरवेश। उन्होंने कहा जा अच्छा उसको बुला लो, जो कोई दरवाजे पर बुला लो। जब उनको बुला करके ले आए और ये महाप्रभु जी का नाम सुने, महाप्रभु से दर्शन पाने के लिए एकदम छटपटा रहे थे, जो ही घुसे घर के अंदर में तभी महाप्रभु दौड़ करके एकदम उनको आ गए और वो भागे, और महाप्रभु जी उनका पीछा करके उनको पकड़ लिया। अरे मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं जाति भक्ति से भ्रष्ट हो गया हूँ, आप मैं बहुत अपवित्र हूँ, मत छूइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं पवित्र होने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ। बस उनको आलिंगन जोर से किया, साथ ही साथ उनको कहा कि जाओ स्नान करके अभद्र वेश छोड़ करके आओ, अर्थात केश वो सब साफ करके आओ। उनके पास में एक लोम कंबल था, ऊनी घोर कंबल, ऊनी कंबल बहुत बेशकीमती था, उनके साले ने उनको दे दिया था, सीतांत जी लेकर के आए,
भगनी को दे दिया,
भगनी पर। तो उसको लेकर के गए गंगा के किनारे स्नान करने, एक भिखारी को देखा, वो अपना चिथड़ा गुदड़ी सुखा रहा था, कहे आप कृपा करके हमारा ये ले लीजिए और गुदड़ी हमको दे दीजिए। कहे से आप दिल्लगी करने का कोई स्थान नहीं है, दूसरे से दिल्लग, उसको ये धारणा ही नहीं थी। अंत में उन्होंने जोर से दे करके और गुदड़ी लेकर के आए महाप्रभु। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको जितना शिक्षा था उनको शिक्षा दे करके तब फिर वृंदावन में भेजा। भजन करना है तो इस प्रकार से हम लोग आदर्श को पूरा नहीं कर, इसलिए सनातन गोस्वामी जी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं और विशेष करके संबंध ज्ञान के आचार्य हैं। ये रहते थे गोवर्धन में, किस लिए? गोवर्धन जी ब्रज में हरिदास वर्ग हैं, गोपियों ने भी इसको कहा है, गोपिका भी उदितो हरिदास वर्ग मैंने जो सबसे कृष्ण के सेवक हों। कृष्ण के सेवक हों माने क्या? जो भक्ति दे सकते हैं वो सेवक हैं। भक्ति देने वालों में से जमुना जी, गिरिराज जी,
वृंदा देवी,
वृंदा देवी ये प्रधान
गोपीश्वर जी,
इसलिए विशेष करके ये उद्धव इत्यादि, नारद इत्यादि सबसे ये श्रेष्ठ हैं गिरिराज जी, क्योंकि कृष्ण और राधा जी की ये सब प्रकार से सेवा करने वाले हैं, इसलिए हमको भक्ति दे सकते हैं उस प्रकार से। इसलिए गिरिराज जी की सेवा सबसे श्रेष्ठ मानी इसीलिए गई है। श्रीमद् भागवत में राग पंचायत भय इत्यादि का वर्णन है, गिरिराज जी का वर्णन है, उसमें दिया गिरिराज जी सबसे अधिक श्रेष्ठ किस लिए सेवक हैं, कृष्ण और राधा जी सर्वोत्तम सेवा करते हैं और वो सेवा भी दे सकते हैं जीवों को, इसलिए इनकी सेवा से सबसे, इसलिए वो सनातन गोस्वामी भी गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के पास में रहते थे, जहां भी रहते हैं शंकर जी से इनका बड़ा प्रेम, वृंदावन में भी गोपीश्वर महादेव से, काम्यवन में कामेश्वर महादेव से और गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव और मथुरा में तो उल्लेख नहीं है, तब भोग आगे हो सकता है,
ब्रजमंडल परिक्रमा तो मथुरा से
नंदगा में नंदी
नंदगा में नंदी।
तो यहाँ पर ये सनातन गोस्वामी जी रहते थे, एक समय में बहुत मच्छर न लगे, मच्छर लगने पर इन्होंने कहा आप नहीं रहेंगे, शंकर जी को प्रणाम किया जी प्रभु अब मैं चल रहा हूँ, कहे क्यों तो मच्छर लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा मच्छर लगता है तो मच्छर मैं आज ही से समाप्त कर दूंगा, यहाँ से मच्छर नहीं लगेगा, सचमुच में उन्होंने ऐसा कर दिया, सिर्फ बहुत दिनों तक मच्छर नहीं लगते, तब सनातन गोस्वामी जी वहां रहे, वहीं रह करके परिक्रमा करते थे भी, वहां रहने का भी स्थान है, वृंदावन से भी जाकर के स्थान है, तो यहीं पर रहते रहते एक दिन मूर्छित होकर के गिर पड़े, कृष्ण और बलदेव जी आकर के उनको खूब से आड़ किया चादर देकर और ठंडी ठंडी हवा लगाने लगी चादर से और हाथ से स्पर्श कर, इन्होंने आंखें खो दी और कृष्ण बलदेव जी का दर्शन किया, दर्शन देने के बाद में कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले तुम अब कष्ट मत करना, तुमको मैं गोवर्धन की शिला देता हूँ, इसे गोवर्धन की शिला दी और उसमें अपने दाहिने पैर का छाप लगाया, बंसी की छाप लगा दी और गाय कृष्ण को प्यारी है उसलिए उसका खुर भी उसमें दे दिया और एक लकुटी का भी चिन्ह कर जाओ, इसी की परिक्रमा करना, इसकी परिक्रमा करने से ही गोवर्धन राज्य की और ब्रजमंडल की परिक्रमा तुम्हारी पूरी हो,
चार बार
वो एक बार से भी हो, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा होती है, एक मान लो कि एक दुर्बल आदमी है तो वो क्या करेगा, एक बार में हाथ गया तो
नहीं, उसकी शिला भी चार बार में,
वो राधा दामोदर में यहाँ है किंतु तुम्हारा सौभाग्य है ये तुम्हारे पास में है जयपुर में, जो सनातन गोस्वामी को दिया था वो है अभी जयपुर में राधा दामोदर जी के मंदिर में है,
इसलिए तो पूछ रहे हैं
और
राधा दामोदर मंदिर जयपुर में है, यहाँ पर ऐसे
प्रतिभूति प्रतिभूति
ऐसे बनाया क्या,
अब जैसे हुआ यहाँ पर प्रतिभूति कृष्ण ने दे दिया, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, ये भी आर्टिफिशियल नहीं दिखता है, ये भी ठीक है, इसलिए प्रतिभू उसको मान लो, जैसे वहां चले गए वो राधा दामोदर तो यहाँ पर क्या रहे वही है, किंतु असली जो विग्रह है जिसको रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से बनाया था वो है जयपुर में, इतना छोटा सा था, तो सनातन गोस्वामी जी उसको लेकर के आए और प्रतिदिन यहीं पर आकर के वृंदावन में उनकी परिक्रमा करने लगे, इसलिए गोवर्धन जी से सनातन गोस्वामी का बहुत ही संबंध है। दूसरी बात, यदि सनातन गोस्वामी को लौंग मंजरी हम मानते हैं तो लौंग मंदिर से उनका और भी संबंध है, प्रियतम का वहां पर रह करके वो सेवा करते हैं, इस तरह से सनातन गोस्वामी जी से गिरिराज गोवर्धन का भी संबंध है, व्यास जी का ये संबंध है, जितने भी शास्त्र लिखे हैं समस्त शास्त्रों में वेद प्रधान माने गए, वेदों में भी प्रधान उपनिषद माना गया, वो यज्ञ जिसमें लिखा गया है वो नहीं, उपनिषद प्रधान माने, उपनिषद में भी 11 उपनिषद सबसे प्रधान माने, इन उपनिषदों को यदि वृक्ष मान ले तो श्रीमद भागवत क्या है, निगम कल्प तरुर गलितन फलम, वो जब वृक्ष है निगम कल्प तो ये है श्रीमद भागवत एक प्रपत्क फल है, इसमें आठी माने पुछली और ऊपर का छिलका और रेशा नहीं केवल रस ही रस है, किंतु श्रीमद् भागवत का भी कुछ मंथन कर लो। तो ये मंथन करके क्या आएगा, उसमें भी आएगा क्या, कुछ निकल जाएगा। वो निकला क्या, 1 से 9, 11 से 12 और उधर 11, बीच का 1 हुआ, 1 दशम स्तंभ, उसको भी उसका भी सार निकालो तो उसके 5 प्राण हैं। ये 5 प्राण हुए रास पंचाध्याय, और उनमें भी मुख्य जो प्राण है वो 31 समास, 31 समास ये उसका मुख्य है। तो इस तरह से अब ये जो रास हुआ और ये जो बातें हुई, या कहाँ ढूंढ रही थी गोपियां, कहाँ ढूंढ रही थी, यमुना के ऊपर, यमुना उस समय कहाँ थी, कोई कहते हैं यमुनावत नगर है कहीं अरिंद के पास ही, अरिंद जानते हैं, गोवर्धन तो कहाँ था इसका, आज 5000 पहले की बात, हम देखते हैं कि 100 वर्ष में ही कहाँ से कहाँ गंगा नदी तोड़ करके मायापुर को पहुंच गई कुलिया द्वीप में, और कुलिया को पार करके विद्यानगर देख रहा है ना, वहां पर पहुंच गई। ये 500 वर्ष के अंदर में ही ये देखते हैं कहाँ कहाँ नवद्वीप कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये यमुना भी बहुत इधर उधर पहुंच सकती है। तो उसमें लोग कहते हैं ऐसा, जो ये जो यमुना थी कुछ गोवर्धन के निकट भी थी, यदि मान लिया थोड़ा सा ऐसे बहला इसके चाहिए तो उसमें निकट होना कोई असंभव बात नहीं है, उसके पास ही में। इसीलिए कृष्ण गोचारण करते 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 जहाँ नीचे समतल भूमि में थे और उधर में उनके पिता गैया चरा रहे थे ऊपर में, गैयों ने देखा और गैया दौड़ करके आई कृष्ण के पास में जहाँ बछड़े थे, और उनके पिता भी दौड़ करके आए। ये सब का सब मिलता है, रास का विचार, रास का उल्लेख गोवर्धन में भी मिलता है, बल्कि वृंदावन में रास जो है उससे भी श्रेष्ठ रास वहां का मिलता है। इसलिए रास में जो विलास इत्यादि हैं और मादन इत्यादि का भाव उसी में होता है, इसलिए गिरिराज गोवर्धन के निकट में ऐसी सुंदर मनोहर लीला होती है जो व्यास जी के समस्त रचनाओं का सार है। इसलिए हम व्यास जी को प्रणाम करते हैं, सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं, अपने गिरिराज जी गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, जो हम लोग भी इसका थोड़ा सा भी एसेंस सार यदि प्राप्त कर सके हमारा जीवन धन्य। हमारे गुरु वर्ग लोग, आज गुरु पूजा का ये दिन है, हमारे गुरु पार्षद नदी, हमारे शिक्षा गुरु बामन पूज्यपाद बामन महाराज जी हैं, जो हमारे आज गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत भक्त आदमी हैं, वो सभी लोग हमारे गुरु पर गुरु परंपरा आज हम लोगों पर ऊपर में कृपा करें, जिससे कि हम लोग भी अपने गुरु वर्गों की सेवा कर सकें और उनके इन विचारों का हम लोग विश्व में बस पंचा कल्प सुरभ्युर्ति। यदि यही प्रार्थना हम व्यास जी से अपने गुरु जी से करते हैं, गुरु देव प्रार्थना प्रार्थना, यही प्रार्थना को देख करके वो हृदय उनका प्रसन्न हो जाएगा और उस चीज को वो देख, इसलिए सभी का ठीक है अपने अपने अनुरूप में। वैसे ही आप लोग साधन भजन करते गुरु जी के चरणों में व्यास को, गुरु जी को ही व्यास समझ करके और उनसे ऐसी प्रार्थना करें, ये हम लोगों की मांग कामनाएं सिद्ध हों, साधन सजन भी वैसा हो सकता। इसी का नाम अनुशीलन है। अनुशीलन माने क्या, यहाँ पर बैठ गए सुन लिया चले गए, ऐसा नहीं, सुन कर तो उसको विचार करो, विचारण करो, क्या उसको विचार करेंगे, विचार करके प्रवेश करके उसको हम ग्रहण करें। सुन लिया दो कुमार नए पढ़े हुए हैं,
सुन करके विचार करने से ही ये सब चीजें दूर हो जाएगी। तो मोह भय और वो भावनाएं अभी हम लोग भजन रस्ते से हे देव हे दई हे भुवनई कबंधो आज ये श्लोक कल हमने आरम्भ किया। इसमें हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक पर अनुशीलन किया बहुत ही अच्छी तरह से अनुशीलन किया और इसमें सब उज्ज्वल मणि इस श्लोक के अंदर में ले आए। साधारण लोगों के लिए श्लोक की भावना आना बड़ा कठिन है। यदि वो अनुशीलन करते हैं इन चीजों का तब ये लोग कुछ कुछ थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये हे देव हे दई हे भुवनई कबंधो हे कृष्ण हे चपल हे कर्मई कसिंधो हे नाथ हे रमन हे नयनाथ जान हा हा कदान कविता कदम विश्व। एक एक शब्द के अंदर में इतनी चीजें ले आए हैं हम समझते हैं कि वो बिल्लो मंगल ठाकुर की थी उनका लिखा। उसमें ये विचार नहीं कि हमने ये हमारे इस श्लोक में ये भावना है जितना कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसकी सुंदर रूप से तय किया। संक्षेप में हम लोग इसका विचार करते हैं। रसिक वैष्णव होते महाप्रभु जी होते मधवेंद्रपुरीपाद जी होते रूप गोस्वामी होते सनातन गोस्वामी होते जी गोस्वामी होते या पीछे से विश्वनाथ चौपर्ती ठाकुर तो सुन करके एकदम मुक्त हो गया। किंतु हम लोग वैसे अधिकारी नहीं इसलिए अंततः सुन करके तथा यदि जन्म जन्मांतर में ऐसी भावना हो तो हमारे हृदय में ये सब किंतु विचार करने से होगा। यहाँ गए लोग सुना बस चले गए विचार यहाँ पर भी नहीं सुना दूसरी दूसरी चिंता है घर में जाकर से दूसरी चिंताओं में डूब गए सुने दिन रात इस पर विचार करते 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 तब की ऋषि भावना कर देंगे। कृष्ण दास कविराज गोस्वामी जी इसी श्लोक के संबंध में बतला रहे हैं। टीका का अर्थ बदला है हे देव। एक तो इसका साधारण अर्थ होगा जो बिल्व मंगल के विचार से है साधारण अर्थ ये है साधक ऐसी प्रार्थना करता है भगवान जैसा बिंदु मंगल जी करें हे देव हे गई हे भुवनई कबंधो हे कृष्ण हे चपल हे कर्णई के सिंधु हे नाथ हे रमन इत्यादि साधारण रूप में उत्साह। और साधक जब रागानुगा भक्ति में किसी का अनुगमन करके करता है वो रागानुगा भक्ति तो किसी अपने से उच्च ब्रजरस रसी या ब्रज के जो नित्य सिद्ध जो परिकर है उनके भावों का अनुगमन करता है इसलिए इसको रागानुगा कहते हैं। तो जिस भक्त के जिस कृष्ण परिकर के भावों को वो अनुगमन कर रहा है उनके भावों को ये लेकर के कहते हैं। इसलिए जब किसका अनुगमन कर रहे हैं तो श्लोक का मूल उद्देश्य कौन है तब तो इसके लिए वो ले आएंगे श्रीमती राधिका के। किंतु बिल्व मंगल का पक्ष कृष्ण के लिए है राधा पक्ष तो है नहीं इसलिए ये ले आएंगे। राधिका जी जैसे कृष्ण के लिए प्रार्थना करती हैं रोती हैं कलपती हैं है हमारा भी भाव ऐसा ही हो जो कृष्ण के लिए ऐसा और श्रीमती राधिका पक्ष है वो राधिका के भावों को प्रधान करके और तब फिर इस श्लोक का अर्थ लगाए। साधारण लोग जो हैं, हम इसमें इसकी टीका उन्होंने भी की थी, गोपाल भट्ट ने,
गोपाल भट्ट गोस्वामी सर
और कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनका तो कह रहे हैं वो टीका किस मध्य करते हैं। अच्छे दियो तो अच्छे राधा कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर या कृष्ण मथुरा चले जाने पर श्रीमती राधिका जी अत्यंत विवल हो गई। विवल होने पर तो सत्यम को चारों तरफ से प्रवेदित कर रही है। प्रबोधित होने पर कभी वो कहीं गए थोड़े हैं, यही तो हैं, इसे प्रबोध रही कृष्ण कहीं नहीं है। जैसे महाप्रभु जी को स्वरूप दामोदर प्रबोधित कर रहे हैं कि कृष्ण कहीं गए नहीं, ये तो आपके हृदय में ही, यही तो है, कहाँ है हृदय। महाप्रभु जी झट तीर करके नीचे फिर ये कहाँ कृष्ण नहीं है, फिर उनको रोक दिया, फिर भागवत के श्लोकों में उनको उठा दिया। ऐसे ही सखियां अत्यंत विरह में व्यथित श्रीमती राधिका जी को कुछ प्रबोधित कर रहे हैं, करेंगे यही पर पास में हम इतने में उनको कोई शब्द सुनाई पड़ा होने से